ललितं गिरः सवृढस्मितशोभनां स्निग्धिनापङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोदभ्रम् अद्भ्रुवाः स्पृष्ट प्रेमो उद्भ्रमत भ्रुवा तामाह ललितं वीरः सवृढस्मित शोभनां स्निग्धेनापांग पुंखेन स्पृष्ट प्रेमोद्भ्रमत भ्रुवा तामाह ललितं वीरः सवृढस्मित शोभनां स्निग्धेनापङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रमद्भ्रुवा आह संबोधित किया ललितम अत्यंत धीरे से वीरह उस वीर ने सब ब्रीड़ा लज्जा से युक्त स्मित हंसते हुए शोभनाम अत्यंत सुंदर स्निग्धेन काम वासना से अपांग पुंखेन चितवन के तीर से स्पृष्टः इस प्रकार बिंधा हुआ प्रेम उद्भ्रमत प्रेम उत्पन्न करने वाली भ्रुवा भों से। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद वीर पुरंजन उस सुंदरी रमणी की भौहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके कामवासना रूपी तीरों से तुरंत बिंध गया। जब वह लज्जा से हंसी तो पुरंजन को अति सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका। तात्पर्य प्रत्येक जीव दो तरह का वीर होता है। जब वह माया का शिकार होता है तो वह भौतिक जगत में महान वीर की तरह महान नेता राजनीतिज्ञ व्यापारी उद्योगपति आदि की तरह कार्य करता है और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की प्रगति होती है। वह इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य हैं, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना परम वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों के स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। इस संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे रोम का वीर एंटोनी जो क्लियोपेट्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले के राजनीतिज्ञ सुंदरियों का उपयोग विष कन्या के रूप में किया करते थे। इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ से विष प्रविष्ट किया जाता था, जिससे यदि वे किसी पुरुष का केवल चुंबन मात्र कर लें तो वह मर जाएं। इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही परम वीर होता है, परंतु अपनी इसी एक दुर्बलता के कारण वह भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट होता है। कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटियां धरे। प्रेम विवर्त में कहा गया है, जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उस पर तुरंत झपटा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्ती इस भौतिक जगत में नहीं भेजा जाता। वह स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकर्षित हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वो वास्तव में वीर है और वो गोस्वामी कहलाता है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों परिस्थितियों में से चुनाव करता है। चाहे तो वो इंद्रियों का दास बन सकता है अथवा उनका स्वामी बन सकता है। इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है और इंद्रियों का स्वामी बनकर आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे नाम हरेर्नामेव केवलं कलो नास्तेव 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 गतिर्यन्यथा। भूतेर्महद्भिर्जयिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूष पुरुषः भुक्ते गुणान् गुणसमूहान् तत्ते प्रणमामि भगवन् नमस्ते। ये प्रसंग पुरंजन का उपाख्यान है। आप लोग लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। कल भी सुना था, एक स्त्री के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन किया गया था। उनके आकर्षण का केंद्र बिंदु है उनके वक्षस्थल, उनकी लजीली चितवन, उनके मंद मुस्कान, उनकी भौहें। ये बात किसी को सबको पता है, सब जानते हैं। आज एक ऐसा श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तामाह ललितम वीरह सबृड स्मित शोभनम स्निग्धेन अपांग पुंखेन स्पृष्ट प्रमोद भ्रमत भुवा। वीर पुरंजन उस सुंदरी रमणी के भौं तथा मुख के मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके कामवासना रूपी तीरों से तुरंत बिंध गया। जब वह लज्जा से हंसी तो पुरंजन को अति सुंदर लगी, अतः वीर होते हुए भी वो उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका। तो श्लोक में जो शब्द दिए गए हैं उस पर थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, फिर आगे प्रभुपाद जी की जो बातें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देखते हैं। श्लोक में कहा गया कि पुरंजन ने उसको देखा। किसको देखा, कौन थी वो? एक सुंदर स्त्री थी। उस सुंदर स्त्री की तुलना किससे की गई है? पुरंजन उपाख्यान के जो मेन हीरो है, प्रमुख हीरो, वो है पुरंजन है, जीवात्मा है। और वो सुंदर एक रूपक है, एक घटना है, घटना नहीं है, एक रूपक है, एक कहानी, कल्पित कहानी के माध्यम से जीवन के सत्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं नारद जी। ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। सो पुरंजन का उपाख्यान ये है, पुरंजन है जीवात्मा, जिस सुंदरी के प्रति वो आकृष्ट हो रहा है वो सुंदरी कौन है? हैं? हाँ जी, बुद्धि है, बुद्धि। क्योंकि वहां पीछे के घटना, जो पीछे के विषय है, उसमें कहा गया है कि पुरंजन ने बहुत शरीर को देखा लेकिन किसी को अच्छा नहीं माना। ये नव द्वार वाला जो मनुष्य शरीर, उसको बहुत अच्छे लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे ये सिद्ध होता है कि बुद्धि प्रत्येक शरीर में बरकरार रहती है, प्रत्येक चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी सर्वोच्च बुद्धि माने जाते हैं, हिरण्यगर्भ। पर पुरंजन को कोई भी शरीर, कोई भी बुद्धि अच्छी नहीं लगी, लेकिन मानव शरीर में जो मानवीय बुद्धि है उसको बहुत अच्छी लगी। पुरंजन उससे रिझ गया। ये एक तुलना है, एक स्त्री का दृष्टांत के माध्यम से बुद्धि को समझाने का प्रयास किया गया है। वो स्त्री के आकर्षण के दृष्टांत देकर समझाते हैं, तामाह ललितम वीरह। वीर हैं, ललित शब्द से प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं, संबोधित किया अत्यंत धीमे से, धीरे से। इस संसार में देखा जाता है, परिवार में जब भी कोई विवाह करता है, घर में नई बहू आती है, वो शुरू शुरू में जब आती है तो सहमी सहमी चलती है, बहुत धीरे धीरे घूंघट दान करके, धीरे धीरे मंथर गति से हाथी की चाल चलती है। पर समय बदल जाता है, कालचक्र बदलता है। जो बहु एक दिन सहमी सहमी चलती थी, समय आने पर पति जब उसे बात करना चाहता है, वो सहमा हुआ करके सोचता है कहीं इसका मूड तो खराब नहीं है, अब बात ऐसे में करूँगा कहीं बिगड़ तो ना जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की घटना है। पुरंजन आज सहमा हुआ है, यद्यपि वीर शब्द से उसको संबोधित किया जा रहा है, पर फिर भी माया के पास उसकी एक भी वीरता नहीं टिकती है, सहम जाता है, कमजोर हो जाता है। कहाँ? स्त्री के सवृण स्मित शोभनाम। जब स्त्री विशेष रूप से लज्जावती होती है तो पुरुष को ज्यादा आकर्षक लगती है। जहां स्त्री अपनी सुंदरता को लज्जा से ढकती है वहां ज्यादा आकर्षक बनती है। स्त्री यदि नग्न रूप से घूमती है वो ज्यादा आकर्षक नहीं बन पाती, देखा जाता है। साड़ी पहनकर, घूंघट तानकर, मांग भर के जब बहुत संकोच से चलती है तो व्यक्ति तरस जाता है उसकी उंगली देखने के लिए। हम एक सज्जन कल मेरे पास बैठे थे तो उन्होंने कहा, जब मुसलमान की स्त्रियां बुरखा धारण करके वो लड़कियां कले जाती थी, बोले उस समय उनके पैरों की उंगलियां भी नहीं दिखती थी, तो जो लड़के पढ़ते थे यदि कहीं उंगलियां दिख जाए ना वो अपने को भाग्यशाली मानते थे। अब बुरखे के अंदर पूरा बंद है, वो आंखें थोड़ी सी दिखती है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी है, लेकिन कहीं कमल कली किसी तरह कहीं उंगलियां दिख गई, क्या उंगलियां हैं, चंपक कली की तरह है। वो लड़के बहुत अपने को भाग्यशाली मानते थे, मानो आज दिन बहुत अच्छा से दिखता है। सो जहां स्वाभाविक लज्जा होती है, चाणक्य पंडित ने भी लिखा है वो स्त्री की शोभा होती है उसकी लज्जा से, लज्जा उसका आभूषण है। तो वहां पर एक स्त्री का इस संपत्ति का वर्णन किया जा रहा है, सबृण स्मित शोभनाम। और एक तो लजीले लज्जा रखें और दूसरा मुस्कुराते। आप लोगों ने सुना होगा जब रुक्मणी का विवाह हो रहा था उससे पहले रुक्मणी ने चिट्ठी लेकर के भेज दिया था, कृष्ण आप सोचते हो कि आप मेरा हरण कैसे करोगे, पर ये बात ध्यान में रखो हमारी कुल की परंपरा है विवाह के पहले दिन उस लग्न में कन्याएं अंबिका पूजा के लिए जाती है, तो जब हम अंबिका पूजा के लिए जाएंगी तो उसी समय रास्ते में मार्ग में मेरा अपहरण कर लेना। रुक्मणी ने चिट्ठी में पूरा पूरा बता दिया था। अब रुक्मणी गई, पूजा की, पूजा के उपरांत जब वो वापिस लौट रही थी तो उस समय उनको देखना था कि कृष्ण कहाँ है, रथ लेकर कहाँ खड़े हुए हैं हमारे चित्त चोर। तो अपने सुंदरता को उन्हीं पर निछावर करना चाहती थी, ना कि अन्य राजाओं पर। तो रुक्मणी जी ने ऐसे एक घूंघट उठा करके थोड़ी लजीली चितवन से मुस्करा दिया। भागवत में लिखा हुआ है वो घोड़े हाथी पर जितने राजे बैठे थे उनकी मुस्कुराहट को देख करके मूर्छित हो गए, सब नीचे गिर पड़े, उनको मूर्छा आ गई। बस रुक्मणी की सुंदरता, पूरी सुंदरता नहीं देखी, केवल घूंघट थोड़ा सा उठाया, भौहें नचाई और थोड़ी सी मुस्कुरा दी, सारे राजा बेहोश। और उसी समय जैसे सिंह भेड़ियों के बीच से अपना भाग लेकर के भागता है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के भागे, रुक्मणी का अपहरण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है ये माया जगत में भगवान ने अपनी शक्ति से दो जीवों को बनाया, एक स्त्री और एक पुरुष। चिड़ियों को भी देखो, कीट पतंग को देखो, मानव तो सबसे बुद्धिमान जीव है, तो ये आकर्षण स्वाभाविक है। स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। पर आकर्षण का केंद्र क्या है स्त्री का? उसकी लजली चितवन, उसका मंद मुस्कान, स्निग्धेन अपांग पुंखेन स्पृष्ट प्रेमोद भवत भ्रुवा। अब वो जब भौंहें थोड़ा नचाती है वो किसी पुरुष के हृदय के अंदर काम वासना को उत्तेजित करती है। ये हमको पता नहीं है कैसे नचाती है, अब भौंहें नचाती कैसे आपको पता है? अब किसको पता है जिसको पूछ लेना चाहिए कैसे भौंहें नचाती हैं। आप लोग एक्सपेरिमेंट आप अपने माता से पूछ सकते हो, पत्नी से, कैसे भाई नचाती है वो भौंहें नचा करके दूसरों के भीतर से काम वासना को उत्तेजित करती हैं, ये भागवत से प्रमाणित हो रहा है। अतः वीर होते हुए भी उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका। तब इसका जब उन्होंने थोड़े तिरछी नजर से देखा, मंद मंद मुस्कुराया, तब पुरंजन को लगा कि कुछ ना कुछ तो बातें करनी चाहिए। कभी कभी भक्त लोग बेमतलब की बातें करते हैं। एक माता जी हमारे पास कंप्लेन आकर के किया एक भक्त के नाम है, बोले वो भक्त आकर के मेरे से बात करता है, परेशान हमको करता है। एक प्रैक्टिकल बात है, बिना कारण का किसी से जाकर के बात करना ये भी एक कामना का संकेत है कि तुम उसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, ये एक संकेत है। अब ये जो माया, ये जो बुद्धि है, ये तो सुंदरता ठीक है, ये तो अपने हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तिरछी चितवन डाल रही है, लेकिन पुरंजन को स्थिर रहना चाहिए था, पुरंजन स्थिर नहीं रह पा रहा है। इसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चाहे वीर कितना भी क्यों ना हो वो परास्त होता है। व्यक्ति की वीरता यहीं पर खत्म है माया के साथ। कंधे पर जुआ डल गई फिर तो वो घूमेगा, यही जीवन का है। हम अपने को कितना वीर माने पर एक जगह में कमजोर है, दास है। अरे हम क्या कहेंगे, कृष्ण ही स्वयं कहते हैं, प्रिया यदि मान करी करे हत्सन वेदस्तुति हईते तहा हरे हमार मन। जब प्रिया डांट लगा दिए तो वो डांट क्या है, वो तो मधुर है, वो मीठी लस्सी से भी ज्यादा मधुर लगती है। प्रिया यदि मान करी करे वत्सन वेदस्तुति हैति तहा हरे आमार मन। यहां पर यह दुर्बलता है, प्रत्येक पुरुष की दुर्बलता है, वो स्त्री के प्रति आकृष्ट हो ही जाता है। और कैसे आकृष्ट होता है, इसके कुछ कुछ बातें सामने की बातें हैं, हंसी मुस्कान बातें, उनकी चंचलता, उनकी आंखों की तरंगे, उनकी भावभंगी, इन सब से वो आकृष्ट करना चाहती। पुरुष उतना नहीं सजता जितना स्त्री सजती है। आप देखो भक्तों में भी देखो, पुरुष उतना नहीं सजता, परंतु उनमें ये नॉर्मल टेंडेंसी है, वो सजती है। 8-10 साल पहले हमको पता नहीं था, हम लोग तो दाढ़ी मूछ बनाते हैं, लेकिन हम एक दिन मित्र विंदा को देखा नजदीक जाकर, जब उसके चेहरे को देखा उसकी आंखों पे ये सब कटा हुआ था। अरे मैंने कहा ये क्या बात है भाई, इसमें क्या ब्लेड लगा हुआ है? तो उसने कहा इसको साइज करना पड़ता है जाकर के पार्लर में। मेरे को पहली बार पता चला, ईमानदारी से कह रहा हूँ व्यासपीठ पर, हमको पता नहीं। मैं कहा हम लोग तो दाढ़ी मूछ काट लेते हैं, तुम लोग आंखों को भी काट लेते हो? नहीं नहीं, ये तो करना पड़ता है, ये वाला सब 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 जानती है लड़कियां, यहाँ पे काटती है, ये हमको पता नहीं था। और इसी को सजाने के लिए ना जाने कितने पैसे लुटाते हैं पार्लर में जाकर के, 10-10, 20-20 हजार रुपये लुटा देते हैं। पहली बार हमको 8-10 साल पहले पता चला कि हम लोग तो दाढ़ी मूछ शेविंग करते हैं, तुम लोग आंख भी काट देते हो, इससे क्या है? लेकिन उनमें ये सामान्य प्राकृतिक प्रकृति है कि वो अपने को सजा करके दूसरों को आकर्षित करना चाहती है, वो धावा बोलती है, ये शक्ति है उनमें, वो सजती है। अब पुरंजन उसमें हार जाता है, पुरंजन अपने को काबू करने में, अपने इंद्रियों पर विजय पाने में असमर्थ हो जाता है। यही है घर घर की कहानी, सही है ना? सही है, तेरे को पता नहीं अभी। बाकी लोग तो जो उम्र के हो गए 50 के 60 के, उनको तो कोई परेशान नहीं है, बाकी 16 से 25, 24, 30 साल तक तो भारी परेशानी। हाँ, चाणक्य पंडित ने कहा कष्टम तो खलु यौवनम, बोले जवानी भी बड़ा कष्टदायक है, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा देती है। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, बोले मूर्खता भी कष्टदायक है। कष्टम त खलु यौवनम, जवानी भी कष्ट देने वाली है। कष्टांत कष्टतरम च वो परगहे निवासनम, पर सबसे अधिक कष्ट देने वाली बात है कि दूसरों के घर पे रहना। और इसको यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं, हम पराई के घर में तो रह ही रहे हैं, अपना घर को तो भुला दिया और पराई के घर में रह रहे हैं, अपने इसको मैं मान लिया। और इसी में ही वीरता, कष्टांत कष्ट तरम चैव परगहे निवासनम, दूसरे के घर में रहना। ओडिशा में एक रिवाज है, पता नहीं यहाँ एक घर का घर दामाद बनते हैं लोग, घर के जमाई यहाँ पे बनता है? कोई कोई नहीं बनता। वो घर का जो दामाद बनता है उसको गांव के लोग बड़ी हीन नजर से देखते हैं, अरे ये घर का दामाद है, बेकार है, बेकार। वो उसका नालायकपना माना जाता है, ये काम करने में असमर्थ है, इसलिए घर दामाद बन करके रह रहे हैं। और हम लोगों के हालत ठीक वैसा ही, माया की गोद में माथा रख करके सो गए, चैतन्य महाप्रभु जगा रहे, जीव जागो, जीव जागो। अरे भाई जगाने वाले को जगा रहे, ये कभी मत भूलना कि सोने वाले को चैतन्य महाप्रभु जगा रहे हैं, ये गलती मत करना। जो सोए हुए हैं उसको चैतन्य महाप्रभु थोड़ी जगा रहे हैं, जो जगे हुए हैं उनको जगा रहे हैं। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। तो हमारा क्या है, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, अपने को भोक्ता मान करके बैठना यही सोना है, अपने को भोक्ता मान लेना यही सोना है। और पुरंजन धीरे धीरे भोक्ता बनने जा रहा है, बात कर रहे हैं भाई पहले नज़र से नज़र मिले, फिर नज़र के बाद फिर करीब आए, फिर बातें हो, फिर चैटिंग हो, फिर तो हम वहाँ मिलेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। सुपुरंजन अभी बात करने के लिए प्रयास कर रहा है, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को और ध्यान दीजिए। ये तो शब्द है, केवल श्लोक का अर्थ है कि उस बुद्धि का आकर्षण, वो बुद्धि इतना आकर्षक लगने लगी। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही प्यार करता है, वो कहते हैं हमसे समझदारों को कौन हो सकता है। और काम का निवास कहाँ है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्या अधिष्ठानम उच्यते। बुद्धि सर्वोच्च स्थान है काम को निवास देने के लिए, और प्रत्येक बुद्धि अपने बुद्धि के, प्रत्येक मानव अपने बुद्धि की प्रवस्था में, जैसी बुद्धि ले जाती है वैसे ये आदमी चलता है। आगे चल के आप लोग सुनोगे, जब स्त्री हंसती है तो ये हंसता है, जब स्त्री रोती है तो ये रोता है, तो जब बुद्धि हंसती है तो इंसान हंसता है, जब बुद्धि रोती है तो इंसान रोता है। आगे चल के पूरी बातें आएंगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वीर दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक जगत का वीर और एक आध्यात्मिक जगत का वीर। भौतिक जगत का वीर कौन माना जाता है? जो भौतिक भोगों को ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, कहीं राजनीतिज्ञ बना, कहीं समाज संस्कारक बना, कहीं वैज्ञानिक बना, कहीं कवि बन गया, कोई बड़ा प्रतिष्ठित हो गया, तो वो भी वीरता में उसका नाम आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये थोथा वीरता है, ये बेकार है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, इस वीरत्व का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन ये वीरता खत्म हो जाएगी। चलता रहा है जगत, जगत क्षण स्थाई है, फिर तुम्हारी वीरता, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा मान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, ये कहाँ तक रहेगा? देवता लोग स्थिर नहीं है, देवताओं का वरदान कहाँ तक स्थिर रहेगा? इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर भी संसार में एक अपेक्षिक रूप में उसको वीर माना जाता है कि भाई वो वीर की तरह कार्य करता है, और इस तरह से सभ्यता की प्रगति होती है। आजकल लोग वायुयान बनाए, टीवी बनाए, मोबाइल बनाए, ये भी एक प्रकार की दक्षता है, कुशलता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इस वीरता का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, ये सब नाशवान है। एक बात कहते हैं बंगला में, अंत भला तो सब भला। जब अंत में सब मौत का शिकार हो ही जाता है, फिर इन सब वस्तुओं का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं होता। इसको समझना पड़ेगा हम सबको। कभी कभी मन में दूसरों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। हमारी क्लास में जितने हम दो चार बच्चे अच्छे पढ़ते थे, फर्स्ट डिवीजन में लेते थे, उसमें से दो तीन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एक ने एमफिल करके पीएचडी करके लेक्चर बना, पर हम इधर आ गए। सभी कमर्स पढ़ते थे, हमारा भी पीओ बनने की बड़ी इच्छा थी, प्रोबेशनरी ऑफिसर। लेकिन मैंने देखा, शुरू से हम गीता पढ़ते थे, लगभग आठ दस साल की जब उम्र थी, तो धीरे धीरे हमने गीता पाठ करना शुरू किया। उसी की कृपा से हमको सब कुछ सामने दिखाई देने लगा। वास्तव में आप प्रोबेशनर ऑफिसर हो जाओ, चाहे सीए बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो क्या होगा उससे? थोड़ा धन इकट्ठा करोगे, विवाह करोगे, दो चार बाल बच्चे पैदा करोगे, थोड़ी गाड़ी में घूमोगे, इतना ही तो है। और वो सब तो हम कृष्ण के पास आकर के भी चले जा रहे हैं। शायद हमारे संगी साथी कितने फ्लाइट में उड़ रहे होंगे, हम लोग तो ज्यादा जा रहे हैं। सो भगवान की भक्ति करने से भौतिक भोग की भी कमी नहीं रहती, वो हो जाता है। परंतु दुर्भाग्य की बात है, वो वीर इस पर ध्यान नहीं लगाता, वो उसी में ही समा जाता है, वो अपनी बुद्धि की सुंदरता में ही फंसा रहता है। उसकी लजली चितवन, मंद मुस्कान, जो अपनत्व की भावना, इससे वो मोहित हो जाता है। आपने देखा होगा, अब धारीवाल गए, धारीवाल में एक दिन हम, अब पता नहीं वहाँ एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में हमने कहा, एक जो यजमान थे, हमने कहा आप जब शाम को नौकरी से वापिस आते हो, आपकी पत्नी अपनी आंचल से आपका मुख पोछ लेती है, आहा कितना परिश्रम करके आए हो, पर दूसरे दिन ऐसा प्रभाव हुआ सचमुच वो पोछने लगी। सवेरे प्रणाम करके शाम को जब उसका पति आया, वो उसका पसीना पोछ करके उसको प्रणाम के बड़ा आदर किया, और वो व्यक्ति बिल्कुल माइक में आकर के कहने लगा। तो उसकी पत्नी उसको फोन करके दूसरी सहेली से बोला आज क्लास लगाती हूँ, तुम भरी सभा में हमारी बेइज्जत करी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेइज्जत नहीं करी, मैं तो आपकी प्रशंसा करी। पर जो भी हो, वो भागवत स्त्री थी, उसने उसका सम्मान किया। लेकिन फिर मैंने कहा तुम्हारा क्या हुआ, जब उसने मुँह तुम्हारा पोछ दिया तो क्या होगा? ना, मेरी जेब में जो था मैंने उनको सौंप दिया, मेरी जेब में जो भी था मैं उनको, मेरा भी मन किया कि मैं भी कुछ दूं। यही होता है परिणाम, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी प्रीति, थोड़ा सा स्नेह, बस व्यक्ति अपने आप को निछावर कर देता है। ये बुद्धि के फांद में ये पुरंजन फंस करके अपने आप को उसका दास बना देगा, और उसी में उसकी वीरता वो मानता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी एक वीरता है, लेकिन इस वीरता से कोई काम नहीं है। बोले वीर तो बन गया, लेकिन देखो बाजीराव को, देखो एंटोनी को, ये तो दो उदाहरण दिए, परंतु ये सब बहुत से ऐसे हजारों के संख्या में है। और प्रभुपाद जी इतने मात्र में वर्णन नहीं करते, बोलते हैं 20 कन्या। बोले सुंदरता का आकर्षण इतना है कि उस सुंदर कन्याओं को पहले से ही 20 इंजेक्शन दे करके उसको विषैला बना जाता था। और अपर पक्ष के जो सेनापति होते थे, जो योद्धा होते थे, उनके पास ये कन्याओं को छोड़ा जाता था, और ये जाकर के ठीक ये जो हाव भंगी है, भाव भंगी, उससे उनको आकर्षित करते थे। और उस आकर्षण से जब वो वीर फंस जाता था, बस एक चुंबन कर देती थी, एक किस कर देती थी, उससे उसका प्राणांत हो जाता था। कितनी खतरनाक चाल ये, यानी कि सुंदरी कन्याओं को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे प्राचीन काल के राजा लोग। और आधुनिक काल में एंटोनी भी गया और बाजीराव भी गया। ऐसा मैंने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान जब लड़ा था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद घोरी के साथ, जिस दिन पराजित हुआ, उसके पराजय का कारण था, उस दिन रात को वो संयुक्ता से मिला था। राजाओं को ऐसा नहीं है, राजा भारतीय राजा एक राजर्षि होता है, उस स्त्री के साथ ऐसा बिना कारण नहीं मिलता ना। परंतु दुर्भाग्य होनी को कौन टार सके, बस पृथ्वीराज चौहान मिला और उसका अंत हो गया। चाहे कितना बड़ा वीर क्यों ना हो, वो स्त्री के सामने उसकी वीरता काम नहीं करती भौतिक जगत। लेकिन दूसरे पक्ष में प्रभुपाद जी सिद्ध करते हैं कि एक वीर होता है आध्यात्मिक वीर, द ट्रू हीरो। आजकल जो हीरो कहा जाता है वो सब बेकार के, सब जीरो है, ये जीरो के भी नहीं है, पर आध्यात्मिक हीरो है गोस्वामी है। प्रभुपाद जी हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, 15 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके नवद्वीप में भजन किए, कई लाख मंत्र का जप किया, अखंड ब्रह्मचारी, भीष्मदेव, बड़े वीर थे, बड़े बड़े वीर। गृहस्थ में भी बहुत वीर हुए, जैसे ध्रुव प्रहलाद है, वीर है ये, मानो ये वीर है। ब्रह्मचर्य धारण करना भी वीरता है, पर गृहस्थ होकर के यदि व्यक्ति संयत जीवन यापन करता है वो भी वीर से कम नहीं। अच्छा, कभी कभी मेरे मन में एक उदाहरण आता है, आप लोग विचार कि यहाँ हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं, गृहस्थ हैं, माताएं हैं, आप लोग सब जाते हो, आजकल की सुविधा है, बाईपास आपने देखा है, बाईपास, एक रास्ता तो शहर होकर के जाता है, एक रास्ता बाईपास होकर के जाता है। तो बाईपास होकर के कई लोग चलते हैं, ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने और सीधे चले, वो तो बाईपास का रोड हो गया, कोई गाड़ी ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़ी चौड़ी सड़क है, बस गाड़ी भगी तो एकदम सीधे जा करके पहुंचा मेन रोड पे। पर कभी कभी देखा जाता है बाईपास में भी रोड एक्सीडेंट हो जाती। ये ब्रह्मचारी सन्यासी बिल्कुल सीधा बाईपास है, लेकिन जो गृहस्थ है वो कहते हैं थोड़ा शहर देख करके चले, कुछ खरीद करके चले, कुछ जूस बिस्किट खा करके चले, वो पत्नी को टांग करके, दो बच्चों उसको लटका करके गाड़ी को उस शहर के भीतर लेकर के जाता है। अच्छा बताओ, एक निष्पक्ष भाव से बताओ, जो अच्छा दोनों रास्ता जाकर के एक जगह में मिलते हैं, प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, दोनों का मार्ग एक ही है, एक जगह में मिलेंगे ये, चाहे गृहस्थाश्रम हो चाहे संन्यासाश्रम हो, दोनों को आश्रम और संज्ञा दी गई है। लेकिन इस पर के रूप में बताओ कि बाईपास होकर के जो गाड़ी चली गई और जो गाड़ी बिल्कुल शहर के बाजार होकर के धीरे धीरे लेकर के पहुंचा दिया, उसमें वीरता किसकी है? हाँ जी, ब्रह्मचारी लोग चुप बैठ गए। किसकी वीरता है? कितने हॉर्न बजते हैं, कितने क्या होता है, परंतु गाड़ी को बिल्कुल स्टीयरिंग पकड़ करके वो लेकर के अपना शहर पार करके उस रास्ते में पहुंचा दिया। सो ये है हमारे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। गृहस्थों को भी कभी भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, वो भी वीरता, अपनी वीरता सिद्ध करे। बाईपास, लेकिन बाईपास जाकर के एक्सीडेंट होना ये तो नालायकपन है। अरे भाई, सीधे रास्ता जा ही रहे हो, फिर एक्सीडेंट क्यों हो रहे? इनके पीछे तो ये पेपा हॉर्न मारता है, उधर साइकिल है, उधर रिक्शा है, उधर आदमी चले जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस है, सबके भीतर होकर के जा रहा है। हाँ, कठिन स्थिति में भी वो हाँ समन्वय करके चल रहा है। जय हो। तो ये भी कभी उत्साह को कभी कमी नहीं करना, पर जिंदगी का जो विशेला फल है वो तो विशेला है ही है। एक भोगता हुआ चलता है, एक त्यागता हुआ चलता है, एक बाईपास से चलता है, एक भीतर से चलता है, लेकिन ये वाला थोड़ा रिस्की है। हाँ, वो महात्माओं का मार्ग है, देखिए दोनों मार्ग है अपनी अपनी जगह पे, वो भी बुरा नहीं है कि ये भी बुरा नहीं है। बाकी तुमको खाना नहीं है, तुमने सीधा चल दिया, इसको खाना है तो ये खा पी करके चलेगा, पर पहुंचेगा वहीं पे। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इंद्रियों को नहीं जीतता है वो गोस्वामी नहीं कहलाता है। और इंद्रियों का आकर्षण, माया का आकर्षण कैसे होता है? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जीवात्मा को जोर जबरदस्त धकेला नहीं गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैसे मैंने पढ़ा बंसीधर एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में भी यही बात लिखी गई। प्रभुपाद जी का ये जो अनुवाद है, जो तात्पर्य है, ये बिल्कुल विश्वनाथ चक्रवर्ती के टीका पर ही आधारित है। वो संस्कृत में लिखा हुआ है और ये हिंदी का अनुवाद है। जीवात्मा अपनी स्वेच्छा से आया है, आकर्षण का केंद्र बिंदु भले ही नारी हो सकती है, लेकिन पुरुष अपने आप आया है, उसको उसने बुलाया नहीं, अपने आप। जो ही आकर्षित हुआ, निकटस्थ समीप में रहने वाली माया उस पर झपटती है और झपटकर उसने उस पर दबोच लेती है। यह है अस्तित्व। लेकिन एक पर कुछ नहीं करती। श्वेता श्वेतर उपनिषद में एक मंत्र आया है, द्वा सुपर्णाश युजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद बत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाक सिति। ये श्वेता श्वेतर उपनिषद 4-6 चतुर्थ अध्याय का छठा श्लोक, छठा मंत्र ही है। बोले शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, दोनों सुंदर है, द्वा सुपर्णा दोनों सुंदर है, जीवात्मा परमात्मा दोनों सुंदर है, पर शरीर रूपी वृक्ष में दोनों बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा सजुजा सखाया, सुंदर हैं और साथ साथ रहते हैं, दोनों में संबंध है, सख्य वृत्ति है, दोनों मित्र है। पर दोनों में अंतर क्या है? एक जबरदस्त इस शरीर के फल को खा रहा है और एक इसमें से उदास रह रहा है। अनस्नन अन्यो अभिचाक स्थिति, एक उपवास रहता, अनस्नन मतलब न खाता हुआ, अभिचाक स्थिति उसी के पास रह करके उसको देख रहा है, उसका साक्षी बन के रह रहा है। और जो भोगा, जो खाया, उस पर माया का दबाव आ गया, वो माया की चंगुल में आ गया, पर परमात्मा के ऊपर नहीं आया। और जो जीवात्मा भोगा, ये शरीर के सुख दुख के फल से वो प्रभावित हुआ, कभी सुखम कभी दुखम, कभी सुखम दुखम मिश्रम, भगवत गीता में ये प्रमाणित किया गया है, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मण फलम, बोले तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं, एक अच्छा एक बुरा और एक अच्छा बुरा मिश्रित फल है। और जो त्यागी हैं उसको ये फल नहीं लगते हैं, जो भोगी है उसको ये फल लग जाते हैं। अरे मेरे मित्रों, कोई भी हम कर्म करना चाहते हैं उसके फल को पहले देखते हैं, और फल चखने की इच्छा होती है तभी व्यक्ति कर्म करने का प्रयास करता है, बिना फल का तो कर्म करता ही नहीं। लेकिन ज्यों ही फल भोगना चाहता है त्यों ही बंधन आ जाता है, ये समस्या है। बिना फल का काम करेगा नहीं और फल खाएगा तो बंधन में पड़ जाएगा, क्या करोगे फिर? अब कैसे निकलोगे यहां से, कैसे निकलोगे? आप फल के आकांक्षा के बिना कोई नहीं काम करना चाहता, बताइए कोई भी है इधर? प्रयोजनोपि अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तय, ये संस्कृत में एक न्याय है, बिना प्रयोजन का मूर्ख भी काम नहीं करता। तो कौन है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, बिना फल का कौन काम करना चाहता? कोई नहीं करना चाहता। अब करे क्या? इसका मतलब यदि फल हमको बांधता है, वो फल विषैला है, ये फल जहरीला है, ये फल हमारे लिए संकट कारक है, ये फल हमको जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है, ये फल हमको खत्म कर रहा है। बार बार भगवान कहते हैं कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर ये काम होता नहीं है, नहीं होता है। क्या करोगे? संसार चक्र में फंस जाओगे? उत्तर दिया करो, सब पुराने लोग बैठे हो, फल खाए बिना रहा नहीं जाता, फल के बिना काम नहीं चलता, अब क्या करोगे? अरे भाई आसक्ति क्या नहीं होगा, खाना चाहते हो। अब देखो एक बात, हमको इस संबंध में एक बहुत रामायण की कथा याद आती है। आप लोग जानते हो जब सीता जी के अनुसंधान में हनुमान जी जाते हैं और अशोक वाटिका में सशोक सीता के साथ मुलाकात होती है, वार्तालाप होने के बाद, परिचय होने के बाद हनुमान जी जब उनसे विदाई लेके आते हैं तो उसी से पहले हनुमान जी कहते हैं मात, आप आज्ञा कर तो थोड़ा फल खा करके चले। अब देखो फल है, रामायण की जो बातें हैं उसको ऐसे ही नहीं लेना, उसका गहरा अर्थ है। हनुमान जी कहते हैं मां अगर आज्ञा हो तो मैं थोड़ा फल खा करके चलूं। सीता जी तो भक्ति है, साक्षात भक्ति है, सीता जी कहती है बेटा ये फल तो जहरीला है। हनुमान ने कहा जहरीला? ये बड़े मीठे मीठे फल है, जहरीला कैसे हो सकता है? हां बेटा ये जहरीला इसलिए है कि ये दूसरे का है, ये दूसरे का है। अपनी पत्नी अपने लिए मीठी है पर दूसरे की पत्नी तुम्हारे लिए जहर है। अपने घर पे जो धन है वो हमारे लिए मीठा है लेकिन दूसरे का धन जहरीला है। बेटा ये फल जहरीला है, बोले कैसे? बोले रावण का वाटिका है, ये रावण का बगीचा है। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े राक्षस इसकी रखवाली करते हैं, राक्षस रखवाली करते हैं मतलब राक्षस फल खाते थे, नहीं, रामायण में लिखा गया है कि ये जो असुर थे लंका में, इनके भोजन की जो सामग्रियां होती थी ये मानव, घोड़े, हाथी, गधे, इनको वो राक्षस खाते थे। आपने सुना नहीं, कुंभकर्ण ने कहा कि ये सबको बंदरों को हम चबा के खा जाएंगे, ये बंदर मनुष्य, अर्थात असुर जितने थे ये सब मांसभोजी थे। फिर पुष्प फल वाटिका की क्यों रखवाली करते थे? मेरे मित्रों, ये जो असुर है ये सब विकार है। ये विकार जिंदगी के फल को खाने में नहीं देते हैं। जिंदगी का फल क्या है? जीवन का पुरुषार्थ क्या है? क्या जिंदगी का पुरुषार्थ?
नति विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दोराशयाजे बहिरर्थ मानिनः।
प्रहलाद महाराज कहते हैं जिनकी बुद्धि बाहर की ओर है उनको पता नहीं चलता, परंतु जीवन का मूल लक्ष्य है भगवान विष्णु कृष्ण। जिंदगी को जिंदगी का लाज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का लाज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में शर्त अगर मंजूर ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये भाव है, एक कवि ने कहा, प्रत्येक जिंदगी में ये भाव होना, जिंदगी को जिंदगी का लाज पाना चाहिए। जो हमारे लिए आवश्यक है, जो कृष्ण प्रेम है, वो तो मिलना ही चाहिए, तभी जिंदगी मुस्कुराहट में भर जाती है। और जिंदगी में जिंदगी को शर्त अगर मंजूर ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर जिंदगी में कहीं कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, उस पर क्रोध होना चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे जीव रूप तेरा क्रोध पर तेरा क्रोध नहीं हुआ, तुमने जीव पर क्रोध कर लिया पर तेरे क्रोध पर तेरा क्रोध नहीं हुआ। इसी भाव को इस उर्दू कवि ने कहा है, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आज हनुमान जी फल खाने के लिए थे, अब खाएंगे, सीता जी वारण करती है, ये जो विकार है, ये जो दूषित फल को खाने के लिए चाह वो नहीं देते। लेकिन अच्छा फल, दूषित फल अच्छा कैसे हो? रावण की वाटिका है, लेकिन हनुमान तो ऐसा नहीं है, अतुलित, उनका तो बल भी जितना है, अब उनकी बुद्धि भी अतुलित है, ज्ञान अतुलित, ज्ञान अतुलित बल, सब कुछ हनुमान जी में है। हनुमान जी ने कहा, माँ एक प्रश्न मैं करूं। सीता जी बोली, बोलो। बोले, माँ ये धरती किसकी है? हाँ, धरती राम की है। अच्छा, इस धरती से वृक्ष उगे? हाँ, धरती से वृक्ष उगे। माँ आपका जन्म कहाँ से हुआ है? धरती से हुआ है। आपका जन्म धरती से हुआ है, धरती राम जी की है, वृक्ष राम जी धरती जी से उगे हैं, फिर वाटिका रावण की कैसे हो गई? ओहो, सीता जी के मन में प्रसन्नता आ गई। वाह हनुमान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल जैसा ही है, तुम्हारे में बुद्धि वैसी है। तो हनुमान जी कहते हैं, कुछ पंक्तियां हैं, हनुमान जी कहते हैं, जनक सुता सम जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। इस जग में जो जननी है उनको जनक के सुता के रूप में सब जानते हैं। अतिशय प्रिया करुणा निधान की, आप केवल जगत जननी नहीं हो, आप भगवान श्री राम के अतिशय प्रिय भी हो। ताको जुगा पद कमल मनाऊं, चूंकि आप राम जी को प्यारी है, इसलिए आपके चरण कमलों की अगर हम उपासना करते हैं,
जासो कृपा निरी मल मोती पाओ।
जिसके कृपा से हम हमारी निर्मल मति होती है, यही मति देखो, यही बुद्धि, इस बुद्धि के प्रति पुरंजन अट्रैक्ट हो रहा है। ये बेसैली बुद्धि है, ये जहरीली बुद्धि है, ये कामिनी है, लेकिन वो हनुमान कहते हैं जासो कृपा निर्मल मति पाओ। मति बुद्धि एक ही है। भीष्म देव कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भीष्मदेव कहते हैं ये मति मेरी निष्काम मति है, लेकिन पुरंजन के लिए खतरा पैदा करती है। जब बुद्धि को हम अपनी मान लेते हैं तो दुखद स्थिति पैदा हो जाती है, जब बुद्धि को भगवान को समर्पित कर देते हैं फिर आनंद ही आनंद है। पर हो कैसे? हनुमान जी कहते हैं जासो कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले हे भगवती, हे भक्ति, हे माँ जननी जानकी, आपकी कृपा हो तो हमको निर्मल मति मिल जाए। तब सीता जी कहती है देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी जाहो रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जो सीता अव कह रही थी ये जहरीला फल है, वो सीता अव कह रही तात मधुर फल खाओ। तो जीवन में हृदय में जानकी की कृपा हो गई और हृदय में भगवान के चरण कमल आ गए, तब वो जो जहरीला फल था वो मीठा हो गया, जो गृहस्थी बंधन का कारण था वो गृहस्थी मुक्ति का कारण बन गया। तात मधुर फल खाओ देख बुद्धि बल निपुण कपि। प्रत्येक साधक को इस मार्ग को अपनाना है, यही पे हम गलती करते हैं। सुबह से शाम तक तो कहते हैं आप हमारे प्राण से प्रिय हो, आप हमारे से प्राण से प्रिय हो, आप हमारे प्राण से प्रिय हो, कितनों को कहते हैं? दो चार से पूछो भाई तुमने आज कितनों कितनों को बोले हो, अरे भाई आप तो मेरे प्राणों से प्यारे हो। पत्नी रोज बोलती आप तो हमारे प्राण से प्यारे हो, आप तो हमारे प्राण नाथ हो। फिर दो कदम आगे जाएगी फिर और किसी से बोले, उससे पूछो जीवन में कितने बार तुमने बोले, इसका कोई मतलब नहीं होता। जीवन में यदि एक बार हम जगत जननी श्री राधिका जी की कृपा ले लेते हैं जासो निर्मल मति पाऊं। राधा भजन यदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तार। सब संतों ने एक ही बात लिखी, केवल समझदारी की बात है, जानकी की कृपा से निर्मल मति होगी। उस विषैली मति से, उस विकार युक्त मति से आप फल भोग करोगे वो बंधन हो गया, पर विषैला फल अभी मीठा हो रहा है, तात मधुर फल खाओ। केवल भावना का परिवर्तन है, भाव परिवर्तन हो जाए जीवन परिवर्तन हो जाए। आपको हाथ पैर बनाने की जरूरत है नहीं, आप हमारे मन की भावना बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाए। एक छोटी कथा कहकर के हम समाप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं हमारे भारतीय समाज में जब कोई पिता अपनी बेटी को ब्याह देता है उस बेटी के घर पे वो भोजन ग्रहण नहीं करता, ये भारतीय परंपरा है, संस्कार है। एक दिन एक भक्त पिता अपने बेटी के घर गया और रात को रहा किसी कारणवश, वैसे आ जाते हैं पर रात को रहा। बेटी ने बड़ा अनुनय विनय कहा पिताजी भोजन करो भोजन करो। नहीं बेटी हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे? मैं आपकी बेटी हूं, आपके घर में होती तो आप नहीं करते? हाँ करते। बोले क्यों करते? नहीं इसलिए करते कि यहाँ का धन तेरा है और वहां का धन मेरा है, और मेरा धन अगर तू बना लेती तो मैं भोजन कर लेता, पर मैं यहाँ भोजन नहीं करना चाहता। बेटी ने बड़ा अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना की, पर पिता बड़े धर्मनिष्ठ थे, वैसे ही भक्त थे, निष्काम भक्त थे, पर उन्होंने भोजन नहीं किया। रात्रि को विश्राम किए, पर भगवान जब भक्त एक बार दिल से कह देता है ना कि प्रभु हम आपके हैं, फिर भगवान सदा के लिए उनके हो जाते हैं, हमारे में कापट्य रहता है। हम 50 बार एक दूसरे से कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, ये सब धोखे की बात है। जीवन में एक बार यदि व्यक्ति कह देता है प्रभु हम आपके हैं ईमानदारी से, फिर जीवन भर प्रभु उनके ही हो जाते हैं। केवल हमारी ईमानदारी चाहिए। और ये भक्त था, उस भक्त के सपने में रात को भगवान आए, भगवान भी उदासी दिखते थे। अब ये तो उदासी मन में सोया था, भगवान आए उनसे पूछे, अब वार्तालाप हुई तो भक्त ने कहा प्रभु आप क्यों उदास दिखते हो, मैं तो बिना खाया पिया सोया हूँ तो इसलिए मैं उदास हूँ, पर आपके उदासी का कारण क्या है। भगवान ने कहा आज मुझे पता चला। बोले क्या पता चला। ओहो तुम हमेशा कहते थे कि ये संपत्ति ये जायदाद ये घर ये मकान ये दुकान और मेरा शरीर मानस देह गह जो कि छुमोर और अभिन द्वापदे नंद किशोर, लेकिन आज मुझे सत्य पता चला। बोला क्या पता चला। जब तेरी बेटी तुझे भोजन कराने के लिए निवेदन किया तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था बेटी ये संपत्ति तेरी है और घर की संपत्ति मेरी है। अच्छा यहाँ की संपत्ति बेटी की है तो वहां की संपत्ति तेरी है, फिर मेरी संपत्ति क्या है। तब इसका मोह टूटा, नींद भी खुल गई और मोह भी खत्म हो गया। मोह निशा सब सोवन हारा, देखाई सपना विविध प्रकार। पर भगवान जिस पर रीझते हैं उसके मोह को खंड खंड करते हैं। मोह निशा टूट गई उसकी, वो आदमी जग गया, बेटी को बोला बेटी हमारे लिए भोजन लेकर के आओ। बेटी ने कहा पिताजी कल शाम को मैंने इतने प्रार्थना किया आपने नहीं खाया, आज रात को अर्धरात्रि में 12 बजे कहते हो मेरे लिए भोजन लेकर आओ। ना बेटी जो मेरा था भाव कि ये तोर और वो मोर, ये सारी भावना कट गई। ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंच जगत्यम जगत, ये सारा धन तो देने हार के देने देने वाला कोई और है। हाँ, देने देने वाला कोई देन हार कोई और है, ये देने वाला लेने वाला तो कोई और है। मैं केवल झूठा बोलता था कि ये मेरा है ये तेरा है, बेटी ना तो ये तेरा है ना तो वो मेरा है, सब कुछ उन्हीं का है। इसलिए बेटी तू भोजन बना के ला हम भोजन करते हैं। तो बेटी की भावना का भाई परिवर्तन हो गया। तो इसका निष्कर्ष यही मिला कि फल भोगे बिना रह नहीं सकते, अरे फल की प्रेरणा के बिना हम जी नहीं सकते, अब खाएं तो कैसे खाएं। जैसे श्री जानकी ने हनुमान जी से कहा ये हमारे जीवन में ठीक वही नीति अपनानी चाहिए। श्री राधा जी का आशीर्वाद उनकी भक्ति और श्री कृष्ण जी के चरण को यदि हम हृदय लग करके घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारा बंधन नहीं है वो बंधन कट जाएगा, हमेशा के लिए हम प्रभु के हो जाएंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।